सलाम अलैकुम आरश।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
भाई एक अच्छी खबर है और एक बुरी।
बोलो।
पहले अच्छी खबर, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक आदमी है जो फारूक के लिए काम करता था, वो मिल गया है।
उसने बताया नहीं कि फारूक तुर्की से वापस आया है या नहीं?
नहीं, लेकिन कहा कि तुर्की जाने से पहले फारूक ने उससे थोड़े पैसे कर्ज लिए थे।
ये बताओ, उसकी बात से तुम्हें कोई अंदाजा हुआ कि फारूक ईरान से कब गया?
पिछले हफ्ते बुध या जुमेरात के दिन।
जब
लैली का एक्सीडेंट हुआ, फारूक ईरान में नहीं था?
हाँ, लेकिन उससे क्या होगा?
अगर फारूक ईरान में नहीं था, यानी लैली के साथ भी नहीं था, तो फिर लैली एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? कहाँ जाना चाहती थी जो उसके लिए एयरपोर्ट आने से भी ज्यादा अहम था?
अब मैं क्या कहूँ?
फिलहाल मैंने उस आदमी से टाइम लिया है, अगर चाहो तो उससे मिल आते हैं, शायद कुछ मालूम हासिल हो जाए।
अब बुरी खबर बताओ।
लैली ने तकरीबन एक महीने पहले अपनी किताब फारूक के जरिए दफ्तर हिदायत में अप्रूवल के लिए भेजी थी, लेकिन ठीक 15 दिन पहले फारूक ने जाकर किताब वापस ले ली और
कहा कि उसे छापना नहीं चाहते।
क्या ऐसा हो सकता है? लैली ने अपनी किताब को छपवाने के लिए ही तो उस रजिस्टर्ड किताब के लिए काम करना कबूल किया था।
अब मैं क्या कहूँ?
अच्छा, हाँ। ये मेहदी है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तशरीफ रखिए।
कब का टाइम लिया है?
उसने कहा वो फोन करेगा, तुम क्या कर रहे हो?
मुझे भी नहीं पता। फिलहाल खुदा हाफिज।
क्या लैली ने उन्हें बता दिया कि वो ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती? अगर बता दिया होगा तो अभी मसूद साहब बहुत परेशान होंगे, इस बात से भी और एक्सीडेंट से भी।
सलाम अलैकुम। आप लैली गफूरी की माँ हैं?
वालेकुम सलाम। जी हाँ, और आप?
मैं मलीह हिकमत हूँ, लैली की दोस्त, और ये मेरी बेटी है सलमा।
सलाम अलैकुम। सलाम, खुश आमदीद, आपने जहमत की। लैली जान, मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये तुम्हें क्या हो गया मेरी बेटी, क्या हो गया?
मोहतरमा, मेहरबानी करके यहाँ गिरिया नहीं करें। कोमा का मरीज कुछ नहीं सुन सकता, अगर आप खुद को रोक नहीं सकते तो मेहरबानी करके बाहर चली जाए।
हौसला रखें गफूरी बहन, चलिए बाहर जाकर बैठते हैं। चलिए।
क्या आपको पता था वो किस मौजू पर किताब लिख रही है?
जी, मुझे पता था।
आपको इस बात की खबर थी कि उसने कनाडा जाने का इरादा बदल दिया था?
आपसे नहीं कहा था?
मम्मा, आप सारी बातें इन्हें बता क्यों नहीं देती?
मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि खुद लैली बताए कि वो क्या कर रही थी और किस वजह से उसने रुकने को जाने पर तरजीह दी। शायद मेरे बताने से वो राजी ना हो। इंशाल्लाह वो खुद होश में आकर सारी बातें आपको बताएगी।
लैली मसूद के साथ जाने के लिए अपने वालिद के सामने खड़ी हो गई थी। आखिर वो कौन सी चीज है जो एक लड़की को उसके आशिक से दूर कर सके? मैं कभी भी नहीं समझ सकी कि लैली क्या करना चाहती थी। उस दिन भी जब ये एक्सीडेंट हुआ, मसूद को लेने के लिए लैली एयरपोर्ट जाने वाली थी। मैं नहीं जानती कि आखिर क्या हो गया कि अचानक सफर पर निकल पड़ी और यह हॉस्पिटल आ पहुंची।
आ, 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 मसूद साहब की कोई खबर?
आज उनसे कोई बात नहीं हुई है। मुझे डर है कि कनाडा में उनके काम की मसरूफियत की वजह से लैली के ठीक होने तक वो ईरान में नहीं रुके। अब वो आ गए।
सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम करमी साहब।
वालेकुम सलाम।
मैं हिकमत हूँ, कल आपसे बात की थी।
हाँ हाँ, आप खैरियत से हैं?
शुक्रिया।
माफी चाहता हूँ, हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई है।
मेरी किस्मत में नहीं था दरअसल, कुछ ही वक्त पहले मेरी लली के साथ पहचान हुई, यानी आपके कनाडा जाने के बाद।
क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी लली के साथ पहचान कैसे हुई?
मैं वो उसके नए प्रोजेक्ट पर हम साथ काम करते हैं, एक फाइटर पायलट के बारे में। लैली एक कवी लड़की है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
मुझे लैली के ठीक होने की फिक्र से ज्यादा अपने शक की फिक्र है। जा सकते हैं।
सियावश साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। मैं अभी आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि एक दूसरी खबर की तरफ, जो ईरान के एक बहुत ही होनहार सियासी मुसन्निफ के बारे में है। लैली गफूरी एक होनहार राइटर और वेब ब्लॉगर हैं कि जिसका वेब ब्लॉग कई मर्तबा ब्लॉक हो चुका है। लैली तेहरान यूनिवर्सिटी में मास मीडिया की एक फाल स्टूडेंट में से हैं और ईरान में मौजूदा हालात पर आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, ताकि शायद वो अपनी फिक्र को बगैर किसी सेंसर के बयान कर सकें। लेकिन हमें खबर मिली है कि ईरान की ये महबूब लड़की एक सुनसान हाईवे पर जानलेवा हमले का शिकार हुई है। उसकी हालत बहुत नाजुक है और अभी वो कोमा में है। हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं डॉक्टर मुफ्ताकिर साहब। हम चाहेंगे कि वो हमें लैली गफूरी का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उस पर कुछ रोशनी डालें।
हर साल अब्बास के वालिद हाजी इस्माइल बाबाई ईद कुर्बान के दिन ताजिए के मरासिम का अहतमाम करके कज़वीन के लोगों को मीना के मैदान में हजरत इब्राहिम और इस्माइल पर गुजरे वाकई की याद दहानी कराते थे। अब्बास भी ईद कुर्बान के ताजिए में और मुहर्रम में होने वाले ताजिए में भी उसकी उम्र के मुताबिक हस्ती का किरदार अदा किया करता था।
एक बार फिर से पढ़ो बेटा।
मुबारक, कैसे हैं आप? पहुंचने की खबर मिली थी।
एक खलीले खुदा,
आप लोगों के लिए चाय लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाह,
मेरा सलाम देना।
इस्माइल साहब, हम जा रहे हैं, सामान ले लिया है।
खुदा हाफिज। संभाल के जाओ, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ।
फूफी जान, मुझे भी मिठाई दीजिए।
मेरी जान, तुम तो खुद ही बहुत मीठी हो। मलीहा चांद, तुम्हें ईद मुबारक।
आपको भी ईद मुबारक।
आओ 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 ए ज़बीहुल्लाह की माँ, आओ मेरे जिगर के फूल की आँखों में सुरमा लगाओ।
ये लीजिए, आपको भी ईद मुबारक।
आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
संभाल के करना, मेरे बच्चे को पिछले साल की तरह लग ना जाए।
फिक्र मत करो।
मेरे साथ साथ चलो ऐ मेरे बेटा।
मैं आपके साथ आऊंगा मेरे बाबा। मैं आपके साथ आऊंगा मेरे बाबा।
आओ आओ मेरे पास ऐ हाजरा मेरी बीवी, मेरे इस अजीम काम में मेरी।
पुप्पी जान, खून निकला, खून। पुप्पा ने अब्बास का सर काट दिया।
ये क्या कर दिया इस्माइल साहब?
कुछ नहीं बाबा, मलिया ऐसे ही शोर मचा रही है,
बहुत खून निकल रहा है।
अरे नहीं बेटा, छोटी सी खराश है।
एक आईना ले आऊंगी,
अभी जाकर ले आती हूँ।
अगले साल मैं ताजिए में इस्माइल नहीं बनने दूंगी। ये तो सच में ऐसा सोचने लगे हैं कि खुद इब्राहिम है और अब्बास इस्माइल है।
ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बात नहीं, तुम्हें कितने इस्माइल चाहिए?
मलिया
जी,
यहाँ आओ। ये देखो, इलास्टिक लगा दी है ताकि सरके ना।
नहीं चादर नहीं, मैं भाग नहीं सकूंगी।
इलास्टिक लगाई है, तुम खेल भी सकोगी और भाग भी सकोगी।
अगर चादर नहीं पहनूंगी तो क्या होगा?
लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अपने बाल को नामहरम से छुपाना चाहिए, समझी मैडम?
ठीक है, अब्बास से भी, वो तो मेरी फूफी का बेटा है।
इतनी जबान मत चलाओ लड़की, जाओ जाकर खेलो।
उसके लिए आईना लेने आई हूँ।
ठीक है जाओ।
ए, मर्द कभी नहीं रोते हैं। परेशान मत हो, अगले साल भी ताजिए में इस्माइल तुम ही बनोगे। जवाब तैयार हो जाओ, जाना है।
मेरी चादर देखिए कितनी खूबसूरत है। मेरी माँ ने कहा है कि ना महरम को मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए।
अच्छा, तो फिर तुम्हारा चेहरा भी ना महरम को नहीं दिखना चाहिए।
नूर मेरे इस्माइल, तुम मेरी उम्मीद के बाग के फूल हो, मेरे सर के ताज हो। क्या याद है तुम्हें जो तुमने ख्वाब में देखा था ऐ मेरे बेटे? तुमने ख्वाब की ताबीर पूछा जो मैंने नहीं बताया, मेरे लाल नहीं बताया।
हाँ हाँ मेरे बाबा, आप पर मेरी जान कुर्बान, जो ख्वाब में देखा था अभी भी याद है मुझे। ए बाबा, इस वक्त आपके इस सवाल का क्या मतलब है? आपका जो मकसद है इसी वक्त बयान करे। ए बाबा,
ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, जो तुमने ख्वाब में देखा था उसकी ताबीर ये है कि मैं इस जगह तुम्हारी कुर्बानी करूं, कुर्बानी करूं।
खुदा की बारगाह में ऐसी क्या नाफरमानी कर दी? के भेड़ों की तरह मैं आपके हाथों खत्म कर दिया जाऊं।
मेरे लाल इस बारे में तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम खुदा के अजीज हो, इसीलिए वो आज तुम्हारी कुर्बानी चाहता है, कुर्बानी चाहता है।
ये मेरी खुशकिस्मती है मेरे बाबा कि मेरा खुदा काबे में मेरी कुर्बानी चाहता है। बाबा ये लीजिए खंजर और ये मेरा सर, जितनी जल्दी हो सके बाबा मेरी कुर्बानी कर दीजिए।
अपना ध्यान इधर रखो, घर पहुंचकर बताता हूं।
मोहब्बत से उनकी दिलजोई कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी वज्जाहतो वजही अलिल्लज़ी फातिरि समावाति वल अर्ज हनीफन मुस्लिमन वमा अना मिनल मुश्रिकीन। अल्लाहु अकबर,
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ए खंजर खुदाए जलील का हुक्म है के काटना नहीं।
पता नहीं क्या राज है ए खुदाए जलील के खंजर ने क्यों ना काटा गुलुए इस्माइल। ए खंजर मेरे बेटे के गले को काट दे, ऐ खंजर मेरे दिल के टुकड़े को काट दे।
ऐ खंजर के फलक पर मलाइका रोते हैं, ना काट खंजर के अहले अर्ज़ीन रोते हैं।
ए खुदा की बारगाह में रहने वाले बता, मेरे कमसिन इस्माइल की क्यों ना हुई कुर्बानी कबूल।
काट दो भेड़ के सर को जो यहाँ है मौजूद, हुसैन अपना सर करेंगे फिदा करबो बला में।
चाचा ईद मुबारक।
आज तो दोनों बच्चों ने बहुत हंसाया।
क्यों?
मलिये को कितना रोका, हाथ नीचे रखो, लेकिन वो बेचारे अब्बास को हंसाए जा रही थी। माफ करना, जरा इसे भी काट दीजिए।
मम्मा क्या मैं भी इसे काट सकती हूँ?
नहीं मेरी जान, तुम नहीं कर सकती। यहाँ बैठो, देखो हम क्या कर रहे हैं।
लीजिए, ये लीजिए।
शुक्रिया भाई साहब।
ये रुकैया बहन को दे दो।
खुदा तुम्हारे वालिद को जजा दे।
तुम्हारे वालिद को भी। ये लो भाई, ये रुकैया का है।
रुकैया के लिए ज्यादा नहीं।
अरे नहीं बाबा, दे दो।
रुकैया बहन,
ये मुसैब साहब के लिए है।
मुसैब क्या है? मुसैब जरूरतमंद है, उसकी जेब तुम्हारी जेब से ज्यादा भरी हुई है। नहीं, मुसैब को नहीं देना है।
अरे बाबा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसी बातों को कान नहीं देना चाहिए। इस पर मुसैब लिखो।
मैंने कहा ना मुसैब नहीं है।
ये किसका है?
मैं पिछले साल तक इस्माइल से डरता था, लेकिन इस साल से नहीं। मुझे इस्माइल बहुत पसंद है। वो मौत के कितना करीब था, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया।
रोते क्यों? अगले साल भी तुम ही इस्माइल बनोगे। तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ गया तो तुम्हें मार दिया।
लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मलिहा ने मुझे हाथ दिखाया तो मैंने उसे जवाब दिया।
छोड़ो, अब जाने भी दो।
तुम दोनों वहाँ लड़कियों की तरह क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो?
सर इजाजत, अब्बास के बाबा कहते हैं कि अगले साल इस्माइल नहीं।
मेरी माँ ने भी नजर की है कि मैं अभी इस्माइल नहीं बनूं।
अच्छा, तो ये बात है। जब तुम कोई संजीदा काम कर रहे हो तो तुम्हें अपना ध्यान काम पर रखना चाहिए, समझ गए?
हाँ मामू जान, प्रिंसिपल साहब।
नहीं बेटा, यहाँ मामू जान, वहाँ प्रिंसिपल साहब, समझ गए?
हाँ प्रिंसिपल साहब।
बहुत अच्छे, अब इधर आओ। ये खाओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। खाओ संभाल के। सुनो अब्बास, अगले साल इस्माइल बनने का फैसला तुम्हारे इस साल के रिजल्ट पर है।
हाँ मामू जान, प्रिंसिपल साहब।
जरा यहाँ तो दो, कैसा है?
क्या हो रहा है यहाँ? ये लो मलिया बेटी, संभालना, जल ना जाओ।
बेटा जल ना जाओ, संभाल।
ये लो, एहतराम से सबको दे।
फिर कोई खाना नहीं खाएगा।
अभी खाने को बहुत टाइम है, खाओ जल्दी।
सईद और अब्बास यहाँ आओ, इसे दे आओ, जल्दी करो।
ये लो आगे दो।
सुनो बेटा, जो हरे कपड़े में है वो इमाम सादे में सुल्तान का है, उसे किसी और को नहीं दे देना।
यहाँ आओ, ये ले लो, जल्दी करो।
हो गया भाई, ये लो।
अरे वाह वाह, ये हुई ना बात।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये आपके लिए।
तुमने खाया कि नहीं?
और है।
देखो कहाँ बैठा है।
रुकिए, खाला को दे दो। सुग्रह खाला, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। एक मिनट रुकिए जरा। ये लीजिए, कुर्बानी का है।
शुक्रिया।
सलाम अलैकुम रुकैया खाला, कुर्बानी का है ये।
बहुत बहुत शुक्रिया,
सलामत रहे।
मेरा सलाम देना।
जरूर। सलाम अलैकुम नेमत साहब, कुर्बानी का गोश्त लाया हूँ, ये लीजिए। कबूल करें, सईद इनको दे दो। चलो चलो जल्दी दे दो। ये लो चाचा।
तुमने जहमत की।
शुक्रिया।
सईद इन्हें भी एक दे दो।
हाँ हाँ दे आता हूँ।
शुक्रिया।
ये लीजिए चाचा। सैयब साहब क्या देकर आता हूँ?
मैं जाकर इमामजादे में सुल्तान को दे आता हूँ।
ठीक है।
अरे भाई रुको, मुझे भी एक चाहिए।
रुको।
अरे भाई रुको,
मुझे भी एक चाहिए।
मुझे भी एक चाहिए। रुको।
हटो हटो। यूनिस खान, कैसे हैं आप? قربانی کا گوشت لایا ہوں.
وعلیکم السلام بیٹا, خدا قبول کرے, اسے یہاں رکھ دو, ضرورت مندوں کو دے دوں گا.
یونس خان چاچا ابھی بھی شکار جاتے ہیں؟
ہاں, میرے بچوں کو بھی شکار کا گوشت کھانے کی عادت ہے.
جب آپ نے اس ہرن کو مارا تھا تو اس کے بچے بھی تھے؟
مجھے نہیں پتا, شاید.
ضرور اس کے بچے بہت روئے ہوں گے, ایسا لگتا ہے یہ خود بھی رو رہی ہے. کیا کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ درخواست کر رہی ہیں.
چلو جلدی جا کر گوشت دے آؤ ورنہ خراب ہو جائے گا. تم نے خود بھی تو ایک بکرا مارا ہے.
اس میں فرق ہے چاچا. تم نے کبھی ہرن کی ضمانت کی داستان سنی ہے؟ خدا حافظ. انجن گرم ہو گیا ہے؟
जाकर पानी ले आऊं?
क्या खटारा है, पता नहीं क्या हो गया है।
ये जहाज आपका अपना है?
मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है, जहाज कहाँ से खरीदूंगा?
तो फिर किसका है?
सरकार का है, स्प्रे करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं कुर्बानी का गोश्त लाया हूँ सुल्तान के लिए, इमाम जादे का खादिम है। मैं इस्माइल हूँ। सुल्तान को पसंद है कि हर साल कुर्बानी का गोश्त इस्माइल उसके पास लेकर आए। पिछले साल तक कोई और इस्माइल था, वो उसके लिए गोश्त ले गया था।
देखो इस्माइल, एक मेहरबानी करो, कुछ देर के लिए तुम्हारी साइकिल मुझे कर्ज दो।
मेरा नाम अब्बास है, यानी इस्माइल भी है लेकिन अब्बास है। ताजिए में इस्माइल हूँ।
इस्माइल अब्बास जो भी हो, मुझे अंधेरा होने से पहले किसी मैकेनिक को लाकर एक खटारा रिपेयर करवाना होगा। चलकर शहर नहीं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ क्या?
नहीं।
शाबाश, इसे तुम्हारे पास अमानत रखो, मैं साइकिल लेकर जाता हूँ।
मुझे सुल्तान को कुर्बानी का गोश्त देने जाना है और उसके बाद घर जाना है, वरना मेरी माँ परेशान हो जाएगी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे आने के बाद सुल्तान को गोश्त देकर घर लौट जाना, अपनी माँ के पास।
आने के बाद मुझे जहाज पर सवार करोगे?
मैं तुम्हें अभी सवार करता हूँ, आओ। जहाज का ख्याल रखना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, समझे?
ठीक है ठीक है।
ऊपर आओ। माशाल्लाह। वाह वाह वाह, ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था, खुदा कबूल करे, बहुत भूखा था।
आप ही का है।
सुनो, अगर पायलट बनना चाहते हो तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी।
उसकी पढ़ाई मुश्किल है?
नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। तुम एक होशियार बच्चे हो।
ये कब बन जाएगा ताकि इस पर सवार हो सके?
ये क्या टैक्सी है कि इस पर सवार हो जाओगे?
यानी तुम मुझे सवार नहीं करना चाहते?
मैंने तुम्हें सवार तो किया था।
वैसे नहीं, मुझे उड़ना है।
हवाई जहाज में बैठकर उड़ सकूं।
क्या तुम मैं और ये साइकिल इसमें बैठ सकते हैं? हाँ, इतनी जगह है। ये लो अपना कबाब खाओ।
मैं किसी भी हाल में पायलट बनूंगा, एक अच्छा पायलट बनूंगा, बहुत बहुत अच्छा, जो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी का गोश्त भी नहीं खाएगा, किसी को जहाज पर सवार करने का झूठा वादा भी नहीं करेगा।
इस्माइल, मैं तुम्हें ऐसा बोलने पर मजबूर था, वरना तुमने मुझे साइकिल नहीं दी होती। इस्मा, अब्बास, तुम एक बहुत अच्छे पायलट जरूर बनोगे। अब्बास, अब्बास, जो एक मर्तबा उड़ने के लिए इतना रोता है वो जरूर एक अच्छा पायलट बनेगा। अब्बास, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
उसी दिन से अब्बास ने पायलट बनने का फैसला कर लिया था, जबकि उसके घर वाले चाहते थे कि अब्बास डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये मुझे मलीहा हिकमत के वालिद और अब्बास के मामू ने बताया। अब्बास पायलट बन गया।
आपको मुबारक हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, दोबारा तशरीफ लाइएगा। सलामत रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हेलो।
हेलो लली कपूरी,
अभी यहाँ नहीं है। आप
उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं?
बोलिए।
उनसे कहना है क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं? उस दिन मुझसे कहा था कि रात तक सारे पेपर टाइप हो जाने चाहिए। आज 4 दिन हो गए लेकिन उनकी कोई खबर नहीं।
माफ कीजिएगा, लैली गफूरी को कुछ मुश्किल पेश आ गई है। अगर आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं खुद आकर आपके पास से ले लेता हूँ।
लिख लीजिए।
मलीहा हिकमत के मुताबिक अब्बास बचपन से ही बहुत समझदार थे, लेकिन उसने जवानी में जो काम अंजाम दिए वो इस बात का बाइस ना बने कि हम उसके बचपन और नौजवानी को भुला दें। एक और वाकया जिसे अब्बास के मामू शाबान और मलीहा हिकमत के वालिद ने बयान किया।
जब हमारी पतंग आसमान में उड़ेगी ना, तब बहरूज और उसके दोस्तों का चेहरा देखने जैसा होगा।
खुदा करे पिछले जुम्मे की तरह नीचे नहीं आए और हमें शर्मिंदा नहीं करे।
नहीं बाबा, वो तो ठीक से बांधी हुई नहीं थी, वरना अच्छे से उड़ती।
इस बार मैंने अच्छे से बांधी है, देखे क्या होता है।
ठीक है।
सही जाओ, दरवाजा खोलो।
सलाम अलैकुम प्रिंसिपल साहब। जाओ तुम, छुप जाओ, प्रिंसिपल साहब आए हैं, जल्दी करो, भागो, प्रिंसिपल साहब आए।
वो सलाम वाले
गुलेल चलाते हो और स्कूल के शीशे तोड़ते हो। हाँ, इधर आओ। अब्बास कहाँ जा रहे हो? रुको अब्बास, अब्बास रुको, मैं कह रहा हूं ना। मैं तुम्हें रुकने को कह रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो तुम? ठीक है, शनिचर को तुम स्कूल तो आओगे ना?
ये लो तुम्हारे लिए शिकंजबीन का शरबत, इसे पियो और ठंडे हो जाओ, इससे आराम मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, आज जुमे का दिन है, बजाय इसके कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, तुम बच्चों के पीछे भाग रहे हो।
मेरे लिए जुमा शनिचर में कोई फर्क नहीं, लोगों ने अपने बच्चों को मेरे हवाले किया है।
अब्बास ने तो मुझे और उसके वालिद को कल के वाके के बारे में बताया, अब तुम खुद भी बताओ क्या हुआ।
कुछ नहीं, ब्रेक के वक्त टीचर चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक दी।
एक और सुनिए, एक गंजा हजाम की दुकान पर गया, जैसे ही वो अंदर घुसा सबने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, हंस क्यों रहे हो बदबख्तो, मैं पानी पीने आया हूँ।
प्रिंसिपल साहब, अगर इजाजत दें तो इसका जवाब दूं।
रसूल खानी साहब मजाक कर रहे हैं, आप दिल पर मत लगाएं अकबर शाही साहब।
सर इजाजत है, बच्चे मैदान में जुआ खेल रहे हैं।
क्या कर रहे हैं?
जुआ खेल रहे हैं।
मैं अभी आता हूं।
मेरा भी 20 ये मेरा,
मुझे 20 यार दे तो
शाबाश। ये लो जाओ, पैसे उठाओ।
अभी बताता हूँ, जुआ खेलते हो मेरे स्कूल में, जुआ खेलते हो, अभी बताता हूँ। भागो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना नहीं। वाह वाह अब्बास बाबाई साहब, क्या बात है, तुम भी।
मत मारो मामू जान, मैं नहीं था।
मामू जान घर में, मैंने खुद तुम्हें देखा है।
प्रिंसिपल साहब, मैं नहीं था।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? देख कर सीखना चाहते थे ना?
मैं मेरी माँ से कहूँगा, आपने जबरदस्ती मारा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था।
जाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, कहना क्योंकि तुम मेरी बहन के बेटे हो तो मैं सबसे ज्यादा मार पड़ी। बाहर निकलो यहाँ से, बदतमीज।
वो तो सिर्फ देख रहा था, खेला नहीं। तुमने उसे पकड़ कर मारा, अगर मैं तुम्हें मारूं तो?
तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो मेरी बहन? जुआ देखना खेलने से कोई कम नहीं, देखेगा सीखेगा शौक पैदा होगा और ऐसे ही जुआरी बन जाएगा।
सही, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम मुझसे बेहतर समझते हो।
इन चीजों का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, ये तजुर्बा है।
मैं तुम पर फिदा हो जाऊं?
कोई जरूरत नहीं, इसके बदले रोज सुबह अपने बेटे के जेब की तलाशी लो, छुरी चाकू गुलेल जैसी चीजें उसमें ना हो।
वो तो उसका नहीं था, लेकिन गुस्से में था ही कि उसे याद आ गया कि उसके दोस्त का गुलेल उसकी जेब में था। मैंने उसे कहा कि उसे वापस कर दो।
उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम खुद जानती हो कि मुझे अब्बास बहुत पसंद है, अपनी जान से ज्यादा पसंद है।
मेरा अब्बास भी मामू का आशिक है, तुम पर फिदा हो जाऊं।
निचलो निचलो, काटो काटो, अरे संभालो, काटो काटो काटो, अरे संभालो, अरे अरे अरे,
अरे क्या कर रहा है?
ढील दो सही, ढील दो,
अभी
धक्का क्यों मार रहे?
अभी बताता हूँ तुम्हें।
धक्का क्यों चलाते हो?
नहीं छोडूंगा तुझे, आज नहीं छोडूंगा। हमारी शिकायत चल रहा है।
छोड़ उसको।
प्रिंसिपल को हमारी शिकायत चल रही है।
छोड़।
नहीं छोडूंगा।
मार। और मार इसे।
अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो?
कितने लोग मिलकर एक को मारोगे?
उसने तुम्हें चिढ़ाया।
मुझे चिढ़ाया? तुम्हें तो नहीं चिढ़ाया।
लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त
हूँ। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए।
आप जानते हैं कि फारूक ने उस किताब को, मेरा मतलब है लैली गफूरी की किताब को, छपने से पहले वापस क्यों ले लिया?
मुझे भी ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो कहा कि खुद लैली गफूरी उसे छापना नहीं चाहती थी।
अब इस फारूक को कैसे ढूंढ सकते हैं?
ये करामती साहब एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसान है, मुझे नहीं लगता है कि उसे इतनी आसानी से ढूंढ सकोगे।
लेकिन क्यों?
बड़ा ही मूडी इंसान है, 2 साल लगातार काम करता रहेगा, अचानक सब छोड़ छाड़ के 1 साल के लिए शुमाल के जंगल में छुट्टी मनाने चला जाएगा। इस किताब की दास्तान भी ऐसी ही है।
लैली गफूरी की किताब?
नहीं, शहीद बाबाई की किताब। तकरीबन 3 साल पहले मैं करामती साहब का प्रिंटिंग और टाइप सेटिंग का सारा काम किया करता था। वो उसी वक्त से चाहते हैं कि शहीद बाबाई पर एक किताब छापें। आइए तशरीफ लाइए, आइए बैठिए।
क्या फारूक शहीद बाबाई के रिश्तेदारों में से है?
नहीं, एक मर्तबा मैंने काफी इशारा किया कि वो बताएं कि शहीद पर किताब क्यों लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे दबे अल्फाज में कहा कि वो शहीद बाबाई के मखरूस थे जिसे वो किसी तरीके से अदा करना चाहते थे।
कैसा कर्ज?
नहीं बताया। इतना समझ में आया कि करामती साहब किसी वजह से अपनी जिंदगी को शहीद बाबाई की देन समझते हैं।
ऐसे तो हम उसे ढूंढने से रहे। मुझे याद है कि एक मर्तबा तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि फारूक इस फहान से है और सिर्फ दफ्तर हिदायत के जरिए ही मालूमात हासिल नहीं कर सकते।
वो इस फहान के किसी गांव से है, मुश्किल लगता है। इसके अलावा वो अभी तुर्की में है, वापस आने तक सब्र करें, वो मेरे पास जरूर आएंगे।
शायद नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
शुक्रिया पैमान साहब। एक मिनट सब्र करें। ये लैली गफूरी का है। जब आखिरी बार करामती साहब यहां आए थे तो ये दिया और कहा कि इसे लैली गफूरी को दे देना। मुझे लगता है शहीद बाबाई के बारे में है।
तुमसे कहा तो था आधे घंटे में आऊंगा, फोन लगा लगा के परेशान कर दिया। अब क्या?
कुछ नहीं बाबा, सब्र करते हैं कि फारूक तुर्की से वापस आ जाए। छोड़ो यार, चलता हूं, मुझे जल्दी है, मिलते हैं।
खुदा हाफिज़।
मलिहा साहिबा, क्या आपको याद है कि अब्बास और स्कूल के चौकीदार का वाकया आपको किसने बताया था?
खुद स्कूल के चौकीदार अहमद साहब ने और एक बार मेरे वालिद ने भी मुझे बताया। अब्बास ऐसी चीजें बहुत किया करते थे।
और कुछ बता सकते हैं?
खुदा की लानत हो उन मोटरसाइकिल सवारों पर, मेरे हाथ आ जाता तो बताता।
ये एक नई मुसीबत। ठीक है, तुम जाओ कुछ दिन आराम करो, मैं यहाँ की सफाई के लिए किसी का बंदोबस्त करता हूँ।
साहब, मैंने आज बड़ी मुश्किल से पूरे स्कूल की सफाई कर ली, मेरी बीवी ने भी मेरी मदद की है।
अब क्या बताऊं साहब, मेरे जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। ये जब हॉस्पिटल में थे तब भी मैं कुछ नहीं कर सक रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था।
मैंने तो तुमसे कहा था नहीं आओ ऐसी हालत में, तुम खुद आ गई। ये दूसरी मुसीबत है प्रिंसिपल साहब, अब आप ही बताएं हम क्या करें।
देखो मेरे भाई, तुम खुद को मेरी जगह पर रखो। मैं बच्चों के माँ बाप को और स्कूल के अहदेदारों को क्या जवाब दूंगा? उन्हें कहूं कि चौकीदार के एक्सीडेंट और उसकी बीवी के जोड़ों के दर्द की वजह से स्कूल में सफाई नहीं हो रही है? आखिर यहाँ सफाई के लिए कोई तो होना चाहिए।
प्रिंसिपल साहब, अगर वो लोग हमारी हालत देखें, अगर मेरी बीवी को देखें कि कितनी मोटी है ये।
घुटनों में दर्द रहता है प्रिंसिपल साहब।
इसके घुटनों में दर्द रहता है, वो आपकी बात मान जाएंगे।
उसके बाद जैसा आप कहेंगे।
तुम चाहते हो कि स्कूल के बाद आस्तीनें ऊपर करके मैं खुद सफाई करूं? हाँ
नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसी बातें ना करें, हम इसे ज्यादा शर्मिंदा ना करें। डॉक्टर ने कहा है 2 महीने बाद मेरे हाथ पैर का प्लास्टर खोल देंगे। वैसे भी मैं आपकी खिदमत में हूँ, खुदा की लानत हो इन मोटरसाइकिल सवारों पर।
खुदा उनका बुरा करे, अगर तुम अपनी आंखें खोलकर चलते तो आज इस हालत में नहीं होते।
ठीक है, तो इन्हीं 2 महीने के लिए क्या करेंगे? कम से कम किसी का बंदोबस्त तो करो।
प्रिंसिपल साहब, हम कहां से एक अच्छे और भरोसेमंद आदमी को ढूंढ कर लाए? किसी से भी बात करेंगे तो पैसे मांगेगा।
वो तो है ही, ये सब लापरवाही का नतीजा है।
प्रिंसिपल साहब, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। खुदा इन मोटरसाइकिल सवारों का बुरा करे।
बस करो बाबा, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी बातें सुन रहे थे ना?
हैं? नहीं मामूजान।
और नहीं तो क्या?
सुन रहा था।
मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे थे?
चाहता हूँ सर, मैं नहीं सुन रहा था। कान छोड़िए।
फिर से मामूजान कहा?
प्रिंसिपल साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।
यहाँ से निकलो, अपने क्लास में जाओ।
मैं चाहता था कि आपसे इजाजत लेकर अंदर आऊं और आपसे कहूं कि जब तक अहमद साहब के हाथ पैर का प्लास्टर खुल नहीं जाता, हम बच्चे स्कूल की सफाई करेंगे। हम एक एक दिन की जिम्मेदारी ले लेंगे, स्कूल के बाद कर लेंगे। तीन 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 बच्चों का या पांच पांच बच्चों का ग्रुप बनाकर सफाई करेंगे, जब तक अहमद साहब और इफ्फत आपा ठीक नहीं हो जाते।
अजदर मासूमी पूरे कज़वीन में 100 मीटर की रेस में पहले नंबर पर आए हैं, सब इनके लिए ताली बजाएं। बहुत बहुत मुबारक, शाबाश शाबाश। जाओ बेटा। ठीक है, इससे पहले कि तुम लोग और भीग जाओ, बच्चों थोड़ी तवज्जो दें, ध्यान से सुने। इससे पहले कि तुम लोग और भीग जाओ, जो जो बच्चे स्कूल की सफाई करने के लिए अपने माँ बाप से परमिशन लेटर लाए हैं, अपना हाथ ऊपर करें। लेटर हाथ में रखो, शाबाश।
सलाम अलैकुम पापा।
वालेकुम सलाम मसूद जान, ठीक तो हो बेटा?
शुक्रिया पापा, ठीक हूँ।
तुमने हमसे लैली के एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? अभी उसकी हालत कैसी है?
आईसीयू में है।
तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल खड़ी नहीं की है।
आपके कानों तक जो बात पहुंची है वैसी नहीं है पापा।
तुम्हें खुशफहमी है या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो?
माफी चाहता हूँ पापा, मैं कहीं पर हूँ, आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा।
मसूद बेटा, जल्दी वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए लैली को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे वहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जल्दी वापस आ जाओ।
ठीक है, मुझे पहले कुछ काम पूरे करने हैं, उसके बाद आ जाऊंगा।
कर्मी साहब, उनके पास वारंट था तो मैंने भी उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी।
मसूद है, कहीं लैली की तबीयत खराब तो नहीं हुई है?
मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं ईरान में नहीं था तब लैली क्या कर रही थी।
काफी वक्त से लैली हमसे अपने काम की बात नहीं करती थी, तुम्हें तो हमसे ज्यादा पता होना चाहिए था।
अम्मी जान, जब मैं वापस आया तो लैली मुझे लेने एयरपोर्ट भी नहीं आई। आपको तो यह पता होगा कि वो कहां जा रही थी।
एक बार मुझसे कहा कि एक किताब लिखने का इरादा है जिस पर काम कर रही हूं।
आज मेरे दफ्तर में घुसा है, लैली की जितनी भी कैसेट सीडी नोट्स थी सब कुछ उठा ले गए।
या खुदा, कौन थे?
यानी आपको कुछ नहीं पता? मेरा पासपोर्ट भी ले गए, इसका क्या मतलब? यानी मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता?
मुझे लैली पर भरोसा था, इसीलिए उसके काम के बारे में बहुत कम पूछता था। उसके बाद वो अपना सामान बांधकर तुम्हारे दफ्तर में रहने चली गई। सिर्फ उसकी सलामती की खबर उसकी मां से मिलती थी, बस इतना ही।
ठीक है, खुदा हाफिज।
हेलो, सलाम अलैकुम लैली गफूरी। लैली साहिबा, लैली साहिबा, डॉक्टर मुवाहिद हूँ।
ए अंधाई क्या?
हेलो, मैं डॉक्टर मुवाहिद हूँ, पहचाना मुझे? मुवाहिद मेडिकल, टीशा, नसरपुल के पास। मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अगर चाहो तो आ सकती हो। शुक्रिया।
आप फारूक करामती नाम के किसी आदमी को जानते हैं?
फारूक करामती वही साहब है जिन्होंने मुझे लैली गफूरी से मिलाया। लैली गफूरी ने एक मरतबा मुझे फोन किया था और मिलने आना चाहती थी। मैं एक सेमिनार की भागदौड़ में लगा हुआ था और नहीं मिल सका। मैंने सोचा कि शायद मुझसे नाराज होंगी, इसलिए मुझे दोबारा फोन नहीं किया।
लैली, यानी लैली गफूरी आपसे क्यों मिलना चाहती थी?
दरअसल करामती साहब ने लैली गफूरी से मिलाया था ताकि वो मेरी और अब्बास बाबाई हम दोनों की दास्तान रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि एक जमाने में मैं और अब्बास एक साथ काम करते थे।
इसका मतलब आप भी पहले पायलट थे?
नहीं, हम दोनों नौजवानी में एक मेडिकल स्टोर में काम सीखते थे, वो भी 3 महीने की गर्मी की छुट्टियों में।
ऐ खुदा, माफ कीजिए, मैं एक गलत फहमी का शिकार हो गया था। भूल जाइए। क्या मैं आपसे ये गुजारिश कर सकता हूँ कि अब जब लैली गफूरी खुद यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, आप अपनी दास्तान मुझे बताएं।
क्यों नहीं, जब तक चाय तैयार होती है हम दोनों बैठकर बात करते हैं।
एक मिनट, माफी चाहता हूं।
रिकॉर्ड कर रहे हो?
जी, अब बताएं।
हाजी इस्माइल बाबाई, अब्बास के वालिद। उनकी पहले से तमन्ना थी कि अब्बास डॉक्टर बने, खास तौर पर एक फार्मासिस्ट, क्योंकि वो खुद भी एक क्लिनिक में काम करते थे और उन्हें पसंद भी था। गर्मियों की छुट्टी में मेरे ख्याल में अब्बास 8वीं या 9वीं क्लास में था। उसी मेडिकल स्टोर में जहां मैं काम कर रहा था वहां वो भी आने लगा, लेकिन मैं अब्बास से बड़ा था। मेडिकल स्टोर के मालिक को यह एहसास हुआ कि कई मर्तबा दुकान से दवा कम हुई है और एक दिन उसने अब्बास को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब्बास ने भी कबूल किया कि वो दवा लिया करता था, लेकिन उसके पैसे एक दराज में रख देता था। दराज खोलकर उसमें से पैसे निकालकर दिए। तब हम सबको ये पता चला कि जो लोग दवा लेने आते थे लेकिन उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं होते थे, अब्बास ऐसे लोगों को नजर में रखता था और खुद जाकर उन्हें दवा दे आता था, लेकिन पैसे अपनी जेब से देता था। अब्बास ने काम पर लगने के बाद बहुत ही कम वक्त में मुझसे ज्यादा दवाइयों के नाम याद कर लिए थे। उसकी ईमानदारी की वजह से मेडिकल स्टोर का मालिक उसको बहुत पसंद करने लगा। मैं उससे जलता था। मैं बचपन से बहुत ज्यादा चाय पीता था, इसी वजह से चाय का फ्लास्क हमेशा मेरे साथ रहता था। कभी कभी मालिक का दिल जीतने के लिए मालिक को भी चाय पिला दिया करता था। मेरी हाइट बिल्ट अब्बास से बहुत ज्यादा थी और किसी न किसी बहाने उसे मारता रहता था। मुझे वो पसंद नहीं था। एक दिन जब मैंने उसे सिर पर मारा तो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया और सब्र टूट गया। उसने मुझे भी मारा और मेरा फ्लास्क को उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और उसके बाद हिसाब किताब किए बगैर सर नीचे झुकाया और हमेशा के लिए चला गया। 10 साल बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसी मेडिकल स्टोर में मैं काम करने लगा। ओह, चाय। एक दिन मेडिकल स्टोर का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया मिलिट्री के यूनिफॉर्म में, सीधा चला आया मेरे सामने, सर नीचे झुका लिया। जब उसने सर ऊपर लिया मैंने पहचान लिया, अब्बास था, मेरे साइज से डबल हो गया था। एक दूसरे से गले मिले और बातें शुरू। 2 दिन पहले अमेरिका से आया था। मेरे लिए एक फ्लास्क लाया था, बता रहा था कि तोहफा देने के लिए मैं वहां से सिर्फ एक चाय का फ्लास्क लाया हूं। खुदा उस पर रहमत नाजिल करे, ये वही फ्लास्क है। 35 साल गुजर गए।
हेलो, बोलिए।
सलाम वालेकुम।
हिकमत हूँ, कल आपसे हॉस्पिटल में मिली थी।
जी जी, मुझे याद है।
मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आप कहाँ पर हैं, ताकि कल ललिता का जो भी सामान आपके दफ्तर से उठाकर ले गए थे आपके पास वापस भिजवा सकूँ।
आपको ये बात कैसे पता चली?
क्या बताऊँ, मुझे कल फोन आया था, ललिता के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि हम दोनों साथ में एक
सकाफती काम कर रहे हैं, बस।
माफी चाहता हूँ,
लेकिन आप कौन है?
आप फिक्र ना करें करमी साहब, इंशाल्लाह जल्द ही सही वक्त आने पर जब आपका भी मूड बेहतर हो जाए हम इस मौजू पर बात करेंगे।
ठीक है, मैं अभी अपने दफ्तर जा रहा हूँ, अगर तकलीफ ना हो तो वहीं भेज दीजिए।
जी जरूर, खुदा हाफिज।
ये क्या मेरा पासपोर्ट नहीं है? सलाम अलैकुम मलिहा साहिबा। पार्सल तो मिला लेकिन
मुझे पता है, माफी चाहती हूँ, कल आपको हॉस्पिटल में मिलूंगी, शब खैर।
पता नहीं तुम क्या कर रही थी लैली, मैं पागल हो जाऊंगा।
माफी चाहती हूँ मलिहा साहिबा, मैं शर्मिंदा हूँ, ये सेट करना बड़ा मुश्किल है। अब ठीक है, अगर एतराज ना हो तो ये कुर्सी यहाँ से हटा देती हूँ, बीच में आ रही है। मैं तैयार हूँ, आप शुरू करें प्लीज।
ये सब अब्बास के खतूत हैं।
वो खत जो अमेरिका से भेजे थे?
अमेरिका से देसफुल, हमारी सगाई के बाद तेहरान से। उस वक्त हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब्बास को भी पता था कि मैं उसे पसंद करती हूं, और मुझे भी। उसने ये खत तो लिखे थे, लेकिन उसकी शर्म और हया ने उसे इजाजत नहीं दी कि वो ये खत मुझे भेजे। सब जमा करके रखे थे और हमारी शादी होने के बाद मुझे दिए।
अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा और पहले का बयान करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की शादी कैसे हुई।
पहली बार जब अब्बास और उसके घर वाले मेरा हाथ मांगने आए, मेरी माँ ने बहुत शिद्दत से मुखालिफत की। उनकी सबसे अहम वजह यह थी कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी उनके शौहर के खानदान में हो। दूसरा अब्बास का पेशा। अब्बास ने इसरार किया। उसने कहा कि वो खुद को जहाज से नीचे गिरा देगा।
बड़ी मजेदार धमकी थी। फिर
उसके बाद वो कज़वीन चला गया।
बाबा, बड़ा शानदार इस्तकबाल है।
दिल बहुत बेचैन था सईद।
ऐसा किसकी याद में?
अपने शहर की भाई।
देखो हमारे लिए बिछाया है, बड़ा अच्छा फर्श है।
कलेजी ले लो, कलेजी, कलेजी ले लो, कलेजी, कलेजी गुर्दा, कलेजी।
एक दूसरे से एक वादा करते हैं
कि एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है?
जरूर।
मजाक कर रहा था ख्वाजा सफर। कैसे हो? सलाम, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम मामू।
कैसे बेटा?
हैंड्स अप।
हैंड्स अप बंदूक के लिए बोलते हैं हसन।
लाए ना? अगर नहीं लाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। हाँ
फिर तो तुम मुझे मार दो।
आप और खराब हैं।
अरे अरे नहीं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझे मार मार, अरे लग जाएगी बेटा, अरे उसे उसे मेरे हाथ में दो, अरे अरे लग जाएगी बेटा। हसन क्या कर रहे हो? अरे
सलाम अलैकुम,
क्या कर रहे हो अब्बास रास्ते पर, वो भी इस लिबास में? अच्छी बात नहीं है।
तुमने क्या किया बेटा? मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तुम्हारा बेटा है जो अपने मामू को मारना चाहता है।
तुम तो एक पायलट हो और फिर भी हाँ?
मेरी यूनिफॉर्म की क्या हालत कर दी तुमने? और क्या हाल है आपी जान?
खुदा का शुक्र है बगैर बताए आ गए।
तेहरान में कोई काम नहीं था तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हें भी फायदा होगा। गलत किया?
फायदा तो नहीं पर सर का दर्द है।
जैसा तुम कहो, अंदर चलें।
नो एंट्री, औरतों का प्रोग्राम है। माँ ने जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सुपरे की नजर की थी, मेरे घर चले जाओ।
किसकी नजर है?
मुझे लगता है तुम्हारे लिए ही है। अमेरिका जाने का क्या हुआ, एडमिशन मिला क्या?
अब जो खुदा को मंजूर हो, कुछ पता नहीं है, कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है तो मैं जाकर बाबा को मिलकर आता हूँ। ए बच्चे ये पकड़ो, जरा देखते हैं इसमें क्या है। ये लो। मैंने कहा था ना। ठीक है आप जान, जरा मेहरबानी करेंगी?
जरूर, क्यों नहीं।
कोई काम है, कुछ चाहिए?
खुदा हाफिज।
चलो खुदा हाफिज।
ये तो फाइटर प्लेन है। ओ मम्मा देखो कितना खूबसूरत है।
अरे वाह,